सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। करिश्मा, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट द ऑनगोइंग नवरात्रि एंड देन द पूजा फेस्टिवल व्हिच ट्रूली इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम षष्ठी एंड आई बेग योर पार्डन And we all know that Bengal goes crazy about Pujo, but the news of Kolkata reeling under extreme rainfall with metro and train services disrupted because of heavy rainfall last night, roads water logged and 9 people are dead, in fact, that is really, really saddening. And as the downpour has also caused significant losses to Durga Pandals and also to the local business there. The city is brought to a standstill. Wishing the city and praying for them to come back to normal as soon as possible, as we keep you updated with all the relief works being extended to the people there. But for the time, let's begin with the news making headlines at this hour, Karishma.
जी, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के आज 7 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत के कारण देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है।
President Draupadi Murmu is conferring 71st National Film Award in New Delhi today and a legendary actor Mohanlal to be honored with the Dada Saheb Phalke Award.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा आज से शुरू होगी, वैश्विक संघर्ष और फिलिस्तीन देश को मान्यता मुख्य मुद्दों में शामिल।
Assamese singer Zubeen Garg cremated with state honors in Kamrup.
कोलकाता में रातभर हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित, बिजली का करंट लगने से 7 लोगों की मौत। महापौर ने निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया।
एंड इन एशिया कप क्रिकेट, पाकिस्तान टू टेक ऑन श्रीलंका इन अ सुपर 4 क्लैश एट अबू धाबी दिस इवनिंग। And Karishma, it's now time for our segment Dateline India, and today we will talk about International Day of Sign Languages and also Ayurveda Day. Today, 23rd of September, has been declared by the UN as the International Day of Sign Languages to raise awareness about the importance of sign language in protecting the rights of the deaf people. The proposal for the day came from the World Federation of the Deaf, a federation of 135 national associations of deaf people, representing approximately 70 million deaf people human rights worldwide. The resolution was sponsored by the Permanent Mission of Antigua and Barbuda to the United Nations, co-sponsored by 97 United Nations member states and adopted by consensus on 19th December 2017. And this year's theme is No Human Rights Without Sign Language Rights.
बिल्कुल, और अनुजा, जैसा कि कहा जाता है कि भाषा केवल शब्दों से नहीं भावनाओं से भी बनती है। सांकेतिक भाषा उन लोगों के लिए भी उजाला है जिनकी दुनिया शब्दों से खामोश है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें याद दिलाता है कि संवाद के हर रूप का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह बोला गया शब्द हो या हाथों की भाषा हो। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस सभी बधिर व्यक्तियों और अन्य सांकेतिक भाषा उपयोगकर्ताओं की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन और संरक्षण करने का एक अनूठा अवसर है। सभी व्यक्तियों को जन्म से ही मानव अधिकारों का अधिकार प्राप्त है। इस दिवस को मनाते हुए हम सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने में हुई प्रगति और शेष चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। ये उपलब्धियां एक ऐसे विश्व के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं जहां बधिर व्यक्ति कभी भी कहीं भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकेंगे.
Yes, sign language is important because it provides deaf and hard of hearing individuals with equal access to communication, information and services, ensuring their inclusion and human rights in this world. It is a complete visual language that also offers cognitive benefits, enhances expressive and non-verbal communication, and promotes cultural diversity. According to the World Federation of the Deaf, there are more than 70 million deaf people worldwide, and more than 80% of them live in developing countries. Collectively, they use more than 300 different sign languages, and sign languages are fully fledgedly natural languages, structurally distinct from the spoken languages. There is also an international sign language which is used by deaf people in international meetings and informally when traveling and socializing. It is considered a pidgin form of sign language that is not as complex as natural sign languages and has a limited lexicon.
बिल्कुल, और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन सांकेतिक भाषा के उपयोग को मान्यता देता है और उसे बढ़ावा देता है. यह स्पष्ट करता है कि सांकेतिक भाषाओं का दर्जा बोली जाने वाली भाषाओं के बराबर है और यह सदस्य देशों को सांकेतिक भाषा सीखने में सुविधा प्रदान करने और बधिर समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर व्यक्तियों के मानव अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया. और आज का दिन हमें यह सिखाता है कि जब हम सांकेतिक भाषा सीखते हैं तो हम केवल एक भाषा नहीं बल्कि मानवता की समझ को भी अपनाते हैं.
Absolutely. The resolution establishing the day acknowledges that early access to sign language and services in sign language, including quality education available in sign language, is vital to the growth and development of the deaf individual and critical to the achievement of the internationally agreed development goals. It recognizes the importance of preserving sign languages as part of linguistic and cultural diversity. It also emphasizes the principle of nothing about us without us in terms of working with deaf communities. Of course, learning sign language provides an avenue for individuals to immerse themselves in deaf culture. This immersion allows them to experience the unique and diverse world of the deaf community with its distinctive struggles, strengths, and individuals who may otherwise remain unknown. And the other topic we were talking about today in the Dateline is Ayurveda Day. Karishma, the Indian civilization has ancient roots with rich knowledge traditions, and these include multiple indigenous medical systems, one of which is Ayurveda. The word Ayurveda is derived from the Sanskrit language, where Ayu means life and Ved means science or knowledge, and therefore Ayurveda literally translates into the science of life. And Ayurveda deals with all forms of life and is divided into different categories, like Nara Ayurveda, which is focused on human life and health. The other is Sattva Ayurveda, which deals with animal health and diseases. And Vriksha Ayurveda, which focuses on plant growth, health and diseases. And that is how Ayurveda is not just a system of medicine, but also a philosophy of living aimed at positive health and spiritual growth.
बिल्कुल अनुजा, और कहा जाता है कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है. आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी चिकित्सक है, और आयुर्वेद की जो ज्ञान परंपरा है वो वर्षों पुरानी है और हमारा लगातार मार्गदर्शन भी करती रही है. तो आइए इसे गहराई से समझते हैं कि आयुर्वेद में निवारक और उपचारात्मक दोनों तत्व होते हैं, जिनमें चिकित्सा पद्धति व्यक्तिगत जलवायु और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होती हैं. निवारक पहलुओं में शामिल हैं स्वच्छ प्रोटोकॉल, जीवन शैली अनुशासन और मौसमी दिनचर्या. उपचार में शामिल होती हैं हर्बल उपचार, आहार चिकित्सा और फिजियोथेरेपी. आयुर्वेद प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अनुकूलित व्यक्तिगत उपचार की वकालत करता है. भारतीय चिकित्सक परिषद अधिनियम 1971 आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध प्रणालियों को औपचारिक मान्यता प्रदान करता है, जिससे मानकीकरण और विनियमन सुनिश्चित होता है.
Right, Karishma. In the last 2 years, the rampant spread of COVID-19 across the world has brought into perspective the fragility of our healthcare system. It has also gone through a monumental transition with individuals moving from modern medicines to alternative medicines of treatment and a holistic way of living. And here comes Ayurveda. Modern medicine and therapies have limitations when it comes to curing chronic and lifestyle conditions. As a result, the healthcare industry has been in the quest of making the health ecosystem more inclusive, holistic and affordable. And these approaches have recently brought Ayurveda into the limelight again. Ayurveda is based on the concept of Tridosh theory, Vat, Pitt and Kapha. The 7 body tissues or dhatus are Ras, Rakt, Mamsa, Medha, Ashti, Majja and Shukra. Health is defined as the balanced state of these doshas, dhatus and waste product. And diseases arise from imbalance and Ayurveda treats the root causes and not just the symptoms.
बिल्कुल. और श्रोताओं, आयुर्वेद दिवस पहले हर साल धनतेरस पर देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के सम्मान में मनाया जाता था. चंद्र कैलेंडर पर आधारित तिथि हर साल बदलती रहती है, इसलिए भारत सरकार ने इसे एक निश्चित दिन यानी कि इस वर्ष से हर साल 23 सितम्बर को मनाने का फैसला किया. अब संयोग की बात यह है कि 23 सितंबर की तारीख शरद विषुव के साथ मेल खाती है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, और यह घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करती है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन के आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुरूप है. ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीकवाद आयुर्वेद के समग्र दर्शन का समर्थन करता है, जिससे विश्व प्राकृतिक सद्भाव और स्वास्थ्य का एक शक्तिशाली रूपक बन जाता है.
Absolutely right. And Ayurveda essentially means the knowledge of life, a precise combination of science and the art of living. And despite significant advances in all allopathic medicines and contemporary healthcare systems, numerous individuals still depend on age-old Ayurvedic remedies to improve the quality of their lives. And today, for many health-conscious individuals, natural has become a new mantra for a healthy lifestyle. Their sentiment is shifting towards the adoption of natural medicine and treatments over synthetic ones. As an alternative method, Ayurveda is unwaveringly acquiring the center stage. The challenging concerns over the modern healthcare system are further boosting the importance of Ayurveda. Moreover, Ayurveda has the potential to revolutionize the modern lifestyle and healthcare ecosystem and make the future medical system more sustainable. And the theme for this year is Ayurveda for People and Planet, and emphasizes that Ayurveda is not just a healthcare system, but a science rooted in the principle of harmony between the individual and the environment. So National Ayurveda Day is observed to focus on the strengths of Ayurveda and its unique treatment principles. And today, National Ayurveda Day was celebrated at All India Institute of Ayurveda in Goa, marking a historic milestone in the global promotion of traditional Indian medicine. Goa Governor Pasupati Ashok Gajapati Raju presided over the event. We have more on this from our correspondent.
The Ministry of Ayush today celebrated the 10th National Ayurveda Day at the All India Institute of Ayurveda, Dhargal in Goa. Chief Minister Dr. Pramod Sawant highlighted Ayurveda's role in tackling lifestyle disorders such as obesity, diabetes and stress. He called for conservation and research on Goa's medicinal plants and announced the signing of a tripartite MOU to promote integrative oncology research and care.
The theme Ayurveda for the People and Planet is deeply relevant today. Ayurveda teaches us that the health is not only the freedom from illness, but the harmony with our body, mind and environment.
Union Minister of State for Ayush, Shri Pratap Rao Jadhav, said fixing 23rd September as Ayurveda Day aligns with autumn equinox, reflecting nature's balance.
10 varshon ki yatra mein pehli baar adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke netrutva mein Bharat Sarkar ne Ayurveda Divas ko nichit tithi 23 September ko manane ka निर्णय लिया है.
The celebration reaffirmed India's resolve to make Ayurveda a pillar of sustainable healthcare worldwide. For Parikrama, this is Mahesh Chopra for Akashwani News, Panji.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Yes, and in this segment, let's go to Himachal first. The Prime Minister's Suryaghar scheme being implemented by the central government in Himachal Pradesh is yielding excellent results, and the state is emerging as a leading region in solar energy production. Under the scheme, rooftop solar plants with a total capacity of around 16 megawatts have already been installed in 4,367 households.
Himachal Pradesh is now being recognized as a green energy state. The Prime Minister's Suryaghar Free Electricity Scheme is proving effective in ensuring 100% consumption of green energy in the state. So far, under this scheme, rooftop solar plants with a capacity of nearly 16 megawatts have been installed in 4,367 households, and subsidies worth about 33 crore rupees have already been disbursed. Under the scheme, panchayats and local bodies are also being provided an incentive of 1,000 rupees per plant. Taking another step forward under the Prime Minister Suryaghar scheme, the Himachal Pradesh government has also made provisions to sell the surplus solar power generated to the Himachal Pradesh State Electricity Board Limited. In the coming days, the target is to install rooftop solar powers in 90,000 households across the state. Certainly, the Prime Minister Suryaghar scheme is playing a significant role in making Himachal Pradesh a green state. For Parikrama, this is Ritesh Kapoor from Akashwani Shimla.
और अब बात रायपुर की कर लेते हैं. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है. पिछले एक दशक में देश के ऊर्जा परिदृश्य में ऐतिहासिक बदलाव आया है. प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना इसमें उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है. छत्तीसगढ़ में अब तक 58,000 से अधिक लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं. पेश है ये खास रिपोर्ट.
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आमजनों के जीवन में आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है. इस योजना से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है. लोग अब बिजली बिल की चिंता से मुक्त होकर सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं. राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के उपभोक्ता सुमित लाल का कहना है कि इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के बाद उनके बिजली बिल में काफी कमी आई है.
बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था तो मैं बहुत परेशान था. उस बात के लिए मैं बहुत समय से लगा हुआ था कि कोई ऐसी योजना आए कि मैं बिजली को बचा सकूं. प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की पूरी विस्तृत जानकारी वहां से लेने के बाद अपने घर में 4 किलोवाट का एक और 2 किलोवाट का एक 6 किलोवाट का मैंने लगवाया बिजली. मैं ये महसूस किया कि मेरे घर का बिजली का बिल शून्य हो गया है. बिल्कुल बिल नहीं आता और इस योजना से बहुत ज्यादा मुझे लाभ मिला.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों को सब्सिडी दी जा रही है. यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ साथ आमजन के लिए आर्थिक बचत का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला.
And now taking you all to Chandigarh, where the wheat and jowar section of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University in Hisar has developed the late wheat variety, that is WH1309. We have more on this from our Chandigarh correspondent.
चौधरी चंद सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुभाग ने गेहूं की पछेती किस्म WH1309 विकसित की है. चौधरी चंद सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि WH1309 किस्म अन्य सभी किस्मों की तुलना में गर्मी के प्रति अधिक सहनशील है. उन्होंने कहा कि इस किस्म की हरियाणा की राज्य बीज उप समिति द्वारा अनुशंसा कर दी गई है. जलवायु परिवर्तन के कारण मार्च के महीने में तापमान की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे गेहूं की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस किस्म की पैदावार पर तापमान के बढ़ने का असर नहीं होगा. उन्होंने बताया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी बिजाई की जा सकती है. इस किस्म से पछेती बिजाई करने वाले हरियाणा के किसानों को अधिक लाभ होगा. उन्होंने बताया कि ये किस्म पीला रतुआ, भूरा रतुआ व अन्य बीमारियों के प्रति रोगरोधी है. ये किस्म जैविक खेती के लिए भी उपयुक्त है व इसे लवणीय क्षेत्र में भी बोया जा सकता है. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
Thank you. और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
यस करिश्मा, इन चेस द रेनिंग फीडे विमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियन ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख हैज बीन अवॉर्डेड अ वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर द अपकमिंग फीडे वर्ल्ड कप 2025। वी हैव मोर फ्रॉम आवर स्पोर्ट्स डेस्क।
Divya's wildcard entry will make the 11th edition of the FIDE World Cup more interesting as the record 21 players from the country will compete. The Indian contingent will be spearheaded by reigning world champion D. Gukesh. The competition is scheduled to take place in Goa from 31st of October. Next we have from hockey, the 18-member Indian junior men's hockey team for the upcoming Sultan of Johor Cup in Malaysia has been announced by the Hockey India. Defender Rohit has been appointed as captain. Coach P.R. Swijesh expressed confidence in the squad and called the tournament a key platform ahead of the Junior World Cup. And in cricket, star South African wicketkeeper batter Quinton de Kock has reversed his ODI retirement to play against Pakistan in a multi-format tour. He is now with South Africa's squads in the ODI and T20I formats. With Nandini Chirag Jha, Sports Desk.
वहीं एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर चरण में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत और बांग्लादेश के दो दो अंक हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका ने अभी तक सुपर फोर में अपना खाता भी नहीं खोला है।
एंड कमिंग टू द बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी एंडेड मार्जिनली डाउन इन a volatile trade today, extending their losing streak for the third consecutive session. Both the indices had begun the day on a positive note, but failed to maintain the momentum in the later half despite brief recovery during intraday. The Sensex slipped 58 points to close at 82,102, while Nifty dropped 33 points to settle at 25,170.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we bring you the story of the great revolutionary freedom fighter Rao Tularam. The day marks the death anniversary of this great leader of the first war of Indian independence of 1857, who fought against the colonial British forces in Haryana, where he is considered a state hero.
Rao Tularam was born on 9th December 1825 in Rampura suburb of Rewari to Puran Singh and Gyan Kaur, and ruled Rewari for 18 years from 1839 to 1857. In 1857, after the rebellion in Meerut and other places, he rose up to support the uprising.
He also helped rebel forces fighting in Delhi with soldiers and resources. He also temporarily succeeded in driving out the British from the southwest Haryana during the rebellion.
On 17th May 1857, Rao Tularam, along with his cousin Rao Gopal Dev and a group of his followers, deposed the local Tehsildar. He raised a force of about 5,000 soldiers and set up a workshop in the fort of Rampura for manufacturing the guns and other ammunition.
Rao helped Emperor Bahadur Shah and other rebel forces who were waging war against the British in Delhi and sent 45,000 rupees along with large quantities of necessary commodities to him. But this help could not protect Delhi, which fell to the British on 20th September 1857.
Soon after, Brigadier General Shawas led a column from Delhi to attack and destroy Rao and his followers in Rewari. Shawas sent a messenger to Tularam, telling him that if he surrenders, along with his guns and arms, he would be treated on merits. But Tularam turned down the proposal.
British officer then sent a strong column under Colonel Gerard on November 10, 1857, which occupied the abandoned fort of Rampura. On November 16, Colonel Gerard marched to Narnaul, where the rebel forces led by Rao Tularam's cousin, Rao Krishan Singh, fought against them.
Tularam's forces fought bravely against the British, as the first charge of rebel forces scattered the British. Colonel Gerard was mortally wounded in the attack. Several other British officers were also killed or injured.
But the British forces successfully retaliated with full force and heavy bombardment. The Battle of Narnaul was one of the most decisive battles of 1857.
After suffering loss and destruction in the Battle of Narnaul, Rao Tularam moved in to Rajasthan and joined the forces of Tantia Tope. But the forces of Tantia Tope were also defeated by British in the Battle of Sikar in Rajasthan. Thereafter, Rao left India to seek help from the Shah of Iran, Dost Muhammad Khan, the ruler of Emirate of Afghanistan, and Alexander II, the Emperor of Russia, against the British colonial empire.
For his defiance, Rao Tularam's estates were confiscated by the British. On 23rd September 1863, he died in Kabul in Afghanistan at the age of 38 due to an infection that spread throughout his body.
A two-day Shahidi Mela is held annually in September at Rampura suburb of Rewari city to commemorate the death anniversary of Tularam. The government of India issued a postage stamp on 23rd September 2001 featuring Rao Tularam. India is forever indebted to the selfless service and sacrifice of martyrs like Rao Tularam.
और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। श्री दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल विरोधी आंदोलन तक देशवासियों को प्रेरित किया। आइए उनकी जयंती पर सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। जन जन के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि दिनकर ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित कविताओं के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। विशेषकर आपातकाल के समय उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है की गूंज देश भर में सुनाई दी। राष्ट्रकवि दिनकर को ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
एंड टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द राइटर पोएट कॉलमनिस्ट एंड प्लेराइट डोएन ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड अ प्रोलिफिक राइटर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। He was one of the seven poets who first published in one of the Tar Saptaks, which ushered in the Prayogvad era, which in time evolved to become the Nayi Kavita movement. And do you have any of the awards he got? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना करिश्मा
बिल्कुल और उन्हें कई सारे जो उनकी रचनाएं होती थी वो काफी भावात्मक और संवेदनशील होती थी और इसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्होंने कई सारी ऐसी कहानियां लिखी थी। बाल साहित्य और व्यंग लेखन में भी उनका काफी योगदान रहा था तो उन्हें कई अवार्ड दिए गए
और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। राइट और इसके बाद द फेमस विलन ऑफ द हिंदी सिनेमा।
मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ।
प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
Yes, he's the very famous Prem Chopra who made his debut in Bollywood with the Bharat Bhushan starer Murmur Ke Na Dekh in 1960, which didn't do well. But later on, he became very famous as the popular villain of the Bollywood cinema. And he didn't have much of hit Hindi films at those times. But it was in 1964 that he played Sukhdev in Shaheed, one of his rare positive leading roles, which became a hit. And his performances from 1965 to 67, he gave many hits like Teesri Manzil and Upkar, but everywhere, of course, he played a villain. And of course, we just played the dialogue, "My name is Prem, Prem Chopra," from the film Bobby, which became very, very popular. And the other dialogue which we played for you was from the film Sautan, which became equally famous.
बिल्कुल, लेकिन अनुजा खास बात ये रही कि प्रेम चोपड़ा आज भी हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने खलनायक की भूमिका को लोकप्रियता और महानता दी।
Very much. And today we also wish a very happy birthday to Tanuja. One of her early films noted for her acting was Baharein Phir Bhi Aayengi in the year 1966, which was directed by Shahid Latif. Incidentally, it was Gurudat team's last offering, especially visible in a song there, where he asked the heroine, the Tanuja, the actor, who worked very hard to help her tone down her performance, because she was a very bubbly kind of actress of that era. Hmm. And the result was that the natural spontaneous performer gave a highly restrained performance, and which became the highlight of the film, and she became very popular after that movie.
Bilkul.
We have a beautiful song from her picture.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इसी के साथ नमस्कार.
नमस्कार.